लूका बाब 18। यीशु ने अपने शागिर्दों को इस कहानी के जरिए तालीम देते हुए ये कहा कि
एक गांव में एक मुंसिफ रहा करता था। उसको खुदा का डर न था और वो खुदा की परवाह ही न किया, और इस बात पर उसने तवज्जो न दी कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसी गांव में एक बेवा रहती थी। वो मुंसिफ के पास आकर कई मर्तबा गुजारिश करने लगी कि यहाँ पर एक आदमी मेरे लिए मसाइल पैदा कर रहा है, बराए मेहरबानी मेरे साथ इंसाफ करो। लेकिन वो मुनसिफ उस औरत को एक अरसे तक मदद करना न चाहता था। लेकिन वो मुनसिफ अपने आप से कहा कि मुझे तो खुदा का डर नहीं है, और ये भी न सोचा कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। तब ये औरत बार बार आती है और मेरे लिए बोझ बन गई है। अगर मैं इंसाफ के जरिए इसका हक दिलाऊं तो यह औरत मुझे तकलीफ न देगी, वरना वो मुझे सताती ही रहेगी।
खुदावन ने कहा,
सुनो कि उस नाइंसाफी करने वाले मुनसिब की बात में भी कुछ माने और मतलब है। खुदा के पसंदीदा लोग रात दिन उसे पुकारते हैं, खुदा उनकी सुनता है और यकीनन उन्हें इंसाफ देता है, और खुदा उन्हें जवाब देने में भी ताखिर नहीं करता। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि खुदा अपने बच्चों की जल्दी मदद करता है। जब इब्न आदम दोबारा आएंगे तो क्या वो दुनिया में लोगों को पाएंगे जो उस पर ईमान रखता हो?
वहाँ पर चंद लोग अपने आप को शरीफ समझते थे, और ये लोग दूसरों के मुकाबले में अपने आप को अच्छे होने का सबूत देने की कोशिश कर रहे थे। यीशु इस कहानी के जरिए उनको तालीम देने लगे।
एक मर्तबा दो आदमी जिनमें एक फरीसी और एक महसूल वसूल करने वाला था, और दुआ करने के लिए हैकल को गए। फरीसी महसूल वसूल करने वाले को देखकर दूर खड़ा हो गया, और इस तरह फरीसी दुआ करने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं दूसरों की तरह लालची नहीं, बेईमान नहीं, और नहीं महसूल वसूल करने वाले की तरह हूँ। मैं हफ्ता में दो मर्तबा रोजा भी रखता हूँ, और कहा कि जो मैं कमाता हूँ उसमें से दसवां हिस्सा देता हूँ। महसूल वसूल करने वाला वहाँ पर तनहा ही खड़ा हुआ था। उसने आसमान की तरफ भी आंख उठाकर न देखा, बल्कि खुदा के सामने बहुत ही आजजी व इनकिसारी के साथ दुआ करने लगा, ऐ मेरे खुदा, मेरे हाल पर रहम फरमा, इसलिए कि मैं गुनहगार हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि बहसियत रास्तबाज के अपने घर को लौटा। लेकिन वो फरीसी रास्तबाज न कहला सका। हर एक जो अपने आप को बड़ा और ऊंचा तसव्वुर करता है वो गिरा दिया जाता है, और जो अपने आप को हकीर व कमतर जानता है वो ऊंचा और बाइज्जत कर दिया जाएगा।
चंद लोग अपने छोटे बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि यीशु उनको छुए, लेकिन जब शागिर्दों ने ये देखा तो लोगों से कहा,
बच्चों को न लाएं।
तब यीशु ने छोटे बच्चों को अपने पास बुलाकर अपने शागिर्दों से कहा,
छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उनके लिए रुकावट न बनो, क्योंकि खुदा की बादशाहत उन छोटे बच्चों की तरह रहने वाले लोगों की होगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ,
और कहा कि
खुदा की बादशाहत को तुम्हें एक बच्चे की हैसियत से कबूल करना होगा, वरना तुम उसमें हरगिज दाखिल ना हो सकोगे।
एक यहूदी कायद ने यीशु से पूछा,
ए नेक उस्ताद, हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
यीशु ने उससे कहा,
तू मुझे नेक क्यों कहता है? सिर्फ खुदा ही नेक है। खुदा के अहकामात तुझे मालूम ही हैं। तू जिना न कर, और किसी का कत्ल न कर, और किसी चीज को न चुरा। दूसरे लोगों के बारे में तू झूठ न बोल, और अपने वालिदैन की तआज़ीम कर।
तब उसने जवाब दिया,
मैं बचपन ही से उन अहकामात का फरमाबरदार हूँ।
जब यीशु ने ये सुना तो उस कायद से कहा,
तुझे एक और काम करना है। वो यह है कि तू अपनी सारी जायदाद को बेच डाल और उससे हासिल होने वाली रकम को गरीबों में तकसीम कर। तब तुझे जन्नत में उसका अच्छा बदला मिलेगा, और मेरे साथ चलकर मेरी पैरवी कर।
जब उसने यीशु की बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत ही दौलतमंद था। तब यीशु ने उसको देखकर कहा,
मालदार लोगों का खुदा की बादशाहत में शामिल होना बहुत मुश्किल है।
और कहा,
اونٹ کا سوئی کے ناکے سے پار نکل جانا ممکن ہے، جبکہ ایک مالدار کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔
لوگوں نے یسوع کی یہ بات سن کر پوچھا،
جب ایسا ہے تو نجات کس کو ہوگی؟
یسوع نے ان کو جواب دیا،
وہ کام کی جو انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے وہ بآسانی خدا کر سکتا ہے۔
پترس نے کہا،
دیکھو ہم نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو گئے ہیں۔
تب یسوع نے کہا،
میں تم سے سچ ہی کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت کے خاطر اپنا گھر، بیوی، بھائی، ماں باپ یا اپنی اولاد کو چھوڑنے والا ہر شخص جو اس راہ میں جتنا چھوڑا ہے وہ اس سے زیادہ پائے گا۔
اور کہا کہ
وہ اس دنیا کی زندگی ہی میں اس سے کئی گنا بڑھ کر اجر پائے گا، اور اپنی اگلی زندگی میں خدا کے ساتھ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔
تب یسوع اپنے 12 رسولوں کو ایک طرف لے جا کر ان سے کہا،
سنو، ہم یروشلم جا رہے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کے ذریعے سے ابن آدم کے بارے میں لکھی گئی ہیں ہر واقعہ سچا ثابت ہوگا۔ اسی کے لوگ اسی کے خلاف ہو کر اس کو غیر یہودی لوگوں کے حوالے کر دیں گے، اور وہ اسے ٹھٹھا کرتے ہوئے بے رحمی سے اس کے چہرے پہ تھوک دیں گے،
اور کہا کہ
وہ اس کو کوڑے ماریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے، لیکن وہ اپنی موت کے تیسرے دن موت سے دوبارہ جی اٹھے گا۔
رسولوں کے لیے یہ بات ممکن نہ ہو سکی کہ وہ مانی سمجھیں۔ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اس حقیقت کو سمجھ نہ سکے، اس لیے کہ اس کے معنی ان کے لیے چھپا دیے گئے۔ یسوع جب یریحو شہر کے قریب پہنچے تو راستے کے کنارے پر ایک اندھا بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس راہ پر لوگوں کی بھیڑ کی آواز سن کر اس اندھے نے پوچھا،
کیا ہو رہا ہے؟
لوگوں نے اس سے کہا،
یسوع ناصری یہاں آیا ہے۔
اس اندھے نے چیخ کر کہا،
اے یسوع، داؤد کے بیٹے، مہربانی سے میری مدد کر۔
بھیڑ میں سامنے والے لوگوں نے اس اندھے کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ باتیں نہ کرے۔ تب اس اندھے نے اور چیخ چیخ کر کہنے لگا،
اے داؤد کے بیٹے، مہربانی سے میری مدد کر۔
یسوع وہیں کھڑے رہے اور کہا،
اس اندھے کو میرے پاس لاؤ۔
جب وہ اندھا قریب آیا تو یسوع نے اس سے کہا،
تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟
تب اندھے نے کہا،
خداوند، مجھے بصارت دے دے تاکہ میں دیکھ سکوں۔
یسوع نے اس سے کہا،
لے بصارت واپس لے، تو ایمان لایا جس کی وجہ سے تجھے شفا ہوئی۔
تب ایسا ہوا کہ وہ اندھا بینا ہو گیا، اور وہ خداوند کی تعریف کرتا ہوا یسوع کے پیچھے ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھنے والے تمام لوگ اس معجزے پر خدا کی تعریف کرنے لگے۔